वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बेहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा। सफारतकारी के बारे में विंस्टन चर्चिल का एक मकूला है जिसमें वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी एक आर्ट है जिसमें लोगों को जहन्नुम जाने के बारे में इस तरह बताया जाता है कि वो इसकी डायरेक्शन या रास्ता पूछने लगें। क्या वाकईतन ऐसा किया जा सकता है कि किसी नापसंदीदा सूरत हाल को मनचाहा बना दिया जाए? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमने एक ऐसे सफारतकार से बात करने की दरख्वास्त की जो सफारतकारी की राह पर एक लंबे अरसे से गामजन है। उन्होंने 1980 में पाकिस्तान की वजारत खारजा से अपने सफर का आगाज किया और मुख्तलिफ रास्तों पर चलते आज यहाँ अमरीका में पाकिस्तान के सफीर हैं। अब तक आप पहचान ही गए होंगे कि आज मेरे साथ पॉडकास्ट कल और आज के मेहमान हैं एम्बेसडर मसूद खान। मुख्तलिफ मुल्कों और इदारों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एम्बेसडर खान पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान के तौर पर भी फ्राइज अंजाम दे चुके हैं। आप पाकिस्तान के जेर कंट्रोल कश्मीर के 27वें सदर का मनसब भी संभाल चुके हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के जिनेवा और न्यूयॉर्क दफातर में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे के तौर पर भी जिम्मेदारियां अदा करते रहे। चीन में सफीर रहे और फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारियां भी संभाली। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं, यहां अपने सुनने वालों को एक ऐसी बात बताऊं जो हो सकता है आप में से बहुत सो को पता भी ना हो। एक वक्त था कि जब एम्बेसडर मसूद खान ने रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन से अंग्रेजी की खबरें भी पढ़ी और प्रोग्रामों की मेजबानी भी की। तो इस तारुफ के बाद अब आप जान लीजिए कि सफारतकारी के कल से आज तक के सफर का मवाजना इनसे बेहतर और कौन करेगा। एम्बेसडर खान, वॉइस ऑफ अमेरिका के उर्दू पॉडकास्ट कल और आज में खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, और मुझे ये मौका देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फौरन ही आगाज कर लेते हैं आज से पहले सवाल का। एम्बेसडर खान, ये बताइएगा कि सफारतकार होने की हैसियत से आप अपने सफर के कल और आज में कोई फर्क देखते हैं? 40 साल पहले और आज सफारतकारी के शोबे में किस अंदाज की तब्दीली देखते हैं आप?
सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे गुफ्तगू का ये मौका दिया, और मैं वॉइस ऑफ अमेरिका का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सफारतकारी के इस सफर में गाहे बगाहे मैं आपके ब्रॉडकास्टर से और आपसे भी गुफ्तगू करता रहा हूँ, और मैं आपके मेयार की बेहद कदर करता हूँ। आपका सवाल जो है उसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊँ कि आपने अपने तारुफी जुमलों में ये कहा था विंस्टन चर्चिल का हवाला देते हुए कि ये किस्म का आर्ट है, तो मैं सिर्फ उसमें ये इजाफा करूँगा कि ये क्राफ्ट भी है और आर्ट। ये सीखना पड़ता है कि सफारतकारी कैसे की जाए, और सफारतकारी जो है वो सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जाती, वो किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि अब तक जो है सफारतकारों ने या सफारतकारी ने क्या सफ़र तय किया है और आगे मंजिलें कैसे तय करनी है। लेकिन उसके साथ साथ जब ये आप क्राफ्ट जो अपना बना लेते हैं, आप मुख्तलिफ कैपिटल्स में या अक़वामे मुत्तहिदा के साथ जब आप वाबस्ता हो जाते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से जो है मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाया जाए, किस तरीके से अमन सलामती के लिए राह हमवार की जाए, किस तरीके से अपने मुल्क के लिए माशी तरक्की की राहें हमवार की जाए। तो उस वक्त ये आर्ट बनता चला जाता है कि मतलब ये है कि आप जो जिस जगह आप मुतय्यन हैं वहाँ के लोगों के साथ आपका मेल जोल कैसा है, उनके इदारों के साथ किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, अपने मुल्क के इदारों और उन इदारों को मिलाने की कैसे कोशिशें करते हैं, तो वहाँ ये आर्ट में तब्दील होता चला जाता है। और दूसरे में आपका सवाल ये था कि जो सफारतकारी में जब मैंने सफारतकारी का आगाज किया था और अब जो है क्या फ़र्क है, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो है बहुत इब्तदाई शक्ल में टेक्नोलॉजी आ रही थी, मिसाल के तौर पर फैक्स मशीन आई थी, और फिर जो है जो 80 की दहाई में या 80 के दहाई के आखिर में और 90 की दहाई के अवाइल में कंप्यूटर आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो जो है आजकल की तरह के यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर्स नहीं थे, उनके साथ खासी मेहनत करनी पड़ती थी उनसे काम लेने के लिए। तो जो एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, जो टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया है, वो सबसे बड़ी तब्दीली है। और जो जिस तरीके से और दूसरे जो जिस दौर में मैंने सफारतकारी का आगाज किया था उस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, बाइपोलर जिसे कहते हैं, और उसमें एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ जो है जो मगरबी इत्तेहाद था उसकी सरबराही अमरीका कर रहा था। तो अब जो है वो हालात बदल चुके हैं। इस पूरे दौर में जब मैं सफारतकारी का सफर करता रहा तो अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन के उभरा और उसे जो है सोल सुपर पावर भी कहते थे। टेक्नोलॉजी सबसे अहम तब्दीली है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वैसे जो फराइज की अदायगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जैसे जो है 40 साल पहले मेहनत करनी पड़ती थी अब भी करनी पड़ रही है। और जो आजकल के नौजवान सफारतकार हैं वो ज्यादा टेक सेवी हैं, ये मैं एक फर्क देख सकता हूँ।
सर ये बताएं, आप अकवाम मुत्तहदा की आपने बात भी कर दी अपने इसी जवाब देते हुए, सवाल जरा देर से करती लेकिन अब चूंकि हमने जिक्र कर ही लिया है, तो जब आपने अकवाम मुत्तहदा में अपने फराइज अंजाम देते हैं तो एक मुल्क के लिए सिफारतकार होते हुए और अकवाम मुत्तहदा में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए, इसमें भी कोई फर्क होता है?
देखिए, सिफारतकारी की कई किस्में हैं और उसमें से दो जानी पहचानी किस्में जो हैं, एक दो तरफा सिफारतकारी है, जैसे कि मैं अमेरिका में मौजूद हूं और इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हम ताल्लुकात को फ़िरोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी इसकी शक्ल जो है उसे कहते हैं कसीरुल मुल्की या मल्टीलैटरल सफारतकारी। तो वो जब आप अक़वाम मुत्तहदा में हों या उसके अलावा अक़वाम मुत्तहदा से मुतालिक जो इदारे हों, जिनीवा में मिसाल के तौर बहुत सी ऐसी तनजीमें हैं जो कि अक़वाम मुत्तहदा से वाबस्ता हैं और बहुत बड़ी बड़ी तनजीमें हैं, मिसाल के तौर UNHCR है जो रेफ्यूजीज महाजरीन के मामलात को देखती है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक बहुत बड़ी तनजीम है वहाँ। आपका सवाल ये कि क्या ये मुख्तलिफ होता है, तो इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि दो तरफा सफारतकारी में आप दो मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटिजिक सियासी और माशी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए कोशिश करते हैं, सकाफ़ती प्रोग्राम जो है उनको तरतीब देते हैं ताकि दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आए, लोगों का आना जाना बढ़े। तो जबकि कसीरुल मुल्क की सफारतकारी में आप किसी एक मुल्क के साथ काम नहीं करते, आप जो है मुश्तरका मकासद के लिए काम करते हैं, लेकिन वहाँ आपका एक कौमी ब्रीफ भी होता है जिसका आप दिफा करते हैं और उसमें जो है मतलब ये देखते हैं कि, और फिर आप जो है वहाँ कोलिशंस बनाते हैं कि आपके हम ख्याल लोग कौन से हैं, तो उनसे मिलकर आपका असर रसूख वहाँ बढ़ता है। और वहाँ मौजूआत भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मतलब यहाँ जो है दो तरफा मामलात के बारे में आप कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ जो है आलमी सतह पर अमन व सलामती के लिए, माशी तरक्की के लिए, उसके बाद जो है समाजी बहबूद के लिए, या आजकल जो है वो मौसमी तगैर के सिलसिले में जो अक़वाम मुत्तहदा ने फैसले किए हुए हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए आप कोशिश करते हैं। तो वहाँ एक किस्म का मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा महसूस किया न्यूयॉर्क में और जिनीवा में कि आप बैन अल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा बन जाते थे, यानी वहाँ जो भी मंदूबीन थे वो सिर्फ अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करते थे, वो बैन अल-अक़वामी बरादरी की भी नुमाइंदगी करते।
अच्छा, सिफारतकारी मुल्कों के दरमियान तआवुन, डायलॉग, मुज़ाकरात हम आहंगी पैदा करने का जरिया है, मुल्कों के दरमियान पुरम ताल्लुकात को फरोग देने का भी तरीका है। आप समझते हैं कि आज की दुनिया में क्या वाकईतन सिफारतकारी मौसर है, और अगर मौसर है तो फिर इतने तनाज़ात और जंगें आज भी क्यों हैं?
यानी जब तक बनी नौ इंसान इस कुर्राए अर्ज़ पे मौजूद है, मैं समझता हूँ कि लोगों के इख्तलाफात रहेंगे, इख्तलाफात की वजह से तसादम होगा, और उस तसादम को कम करने के लिए या उसे ख़त्म करने के लिए सिफारती कोशिशें हमेशा जारी रहेंगी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि आज के दिन और आज के दिन के बाद तमाम तनाज़ात ख़त्म हो गए हैं, ये हमारी बदकिस्मती है लेकिन ये एक हकीकत है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक एतबार से आप ये कह सकते हैं कि आलमी सतह पर सफारतकारी कामयाब रही है, दूसरी जंग अज़ीम के बाद अब तक तीसरी जंग अज़ीम नहीं हुई, वो बहुत होलनाक हो सकती थी क्योंकि बड़े ममालिक के पास जो है वो जौहरी हथियार भी मौजूद हैं। तो अगर आप इसे क्रेडिट देना चाहें तो अक़वाम मुत्तहदा को भी दे सकते हैं, या जो बड़ी बड़ी अक़वाम हैं जो बहुत ख़तरनाक असलाह से मुसल्लह हैं उनको भी आप ये कह सकते हैं कि उनकी कोशिशों की वजह से या उनके ज़ब्त तहमुल की वजह से ये जंगें नहीं हुई। सफारतकारी जो है उसका भी अपना एक किरदार है, और आप ना ये कह सकते हैं कि सफारतकारी जो है वो कुल्लियतन नाकाम रही है, या ये कहें कि जनाब वो कामयाब रही है। तो कहीं ये जब आप इसका तजिया करेंगी तो कहीं दरमियान में है ये, और सफारतकारी कोशिशें जारी हैं बैन अल-अक़वामी सतह पे भी और इलाकाई सतह पे।
सर ये बताइएगा कि जब आप सफारतकारी करते हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, एक सफारतकार का बुनियादी फोकस क्या होता है किसी भी मुल्क के अंदर? जाहिर है आप मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाकर काम करते हैं, तो क्या बुनियादी फोकस होता है जिसके ऊपर आप की इस सफारतकारी या आपका जो ये कोशिशें हैं या तरीकेकार है, उसका फोकस बताइए हमारे सुनने वालों को।
देखिए बुनियादी तौर पर आप की ये जिम्मेदारी होती है कि आप अपने अपने मुल्क के मफादात का दिफा करें और उनका दिफा करते हुए दूसरे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। दूसरे ये है कि सफारतकारों के बुनियादी फ़राइज में एक फ़र्ज ये है कि वो अमन व सलामती के लिए कोशिश करें, कौमों के दरमियान जब झगड़े हो जाएं या झगड़े बनने लगें तो उनको निपटाने की कोशिश करें, उनको हवा ना दें। और फिर ये है कि जब आपकी कौमी सलामती के ऊपर कोई आँच आए तो आप भी मुश्किल फैसलों में शामिल होते हैं। इसका ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि कोई सफारतकार सारे के सारे पैसिफिस्ट नहीं होते, बाज़ोकात जो है उन्हें भी हुकूमत को शायद मशवरा देना होता है कि हमारे मुल्क के दिफा के लिए इस वक्त जो है कोई जंग या नागुजीर हो गई है या किसी ने जंग मुसल्लत कर दी तो फिर जो है आपको दिफा करना होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये कहूँगा कि सरकारों की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुल्कों के दरमियान हांगी बढ़ाएं, अफाहमत होते हैं और जो इख्तलाफी मौजूद उनको गुफ्तगु शनीद के जरिए हल करने की कोशिश करें।
आपकी सिफारत जिम्मेदारियां बड़े कई अशरों पर मुहित हैं सर, कोई ऐसा दिलचस्प वाक्य जो आपको हमेशा याद रहा और आप सुनने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो शायद हम आप शेयर नहीं कर सकते होंगे, क्लासिफाइड चीजों में आ जाती हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी कोई वाक्य?
मुझे कोई ऐसा वाक्य याद नहीं आ रहा, और पूरे का पूरा जो सियासी सफर है, सियासी और सफारती सफर जो है, ये खुद एक बहुत बड़ा वाक्य है और ये कभी खत्म नहीं हुआ। हर दिन जो है एक नया इम्तहान लेके आता है, हर दिन जो है आपकी जांच होती है, आप अपनी जांच करते हैं, दूसरे आपको जांचते हैं, तो ये सिलसिला जारी है। और ऐसे वैसे जैसे कि आपने कहा 20 वाकयात हैं, लेकिन मैं वक्त की तंगी की वजह से तो उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूंगा, और मेरा ख्याल है कि सामईन जो है आपके वो भी इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते होंगे। लेकिन फिर कभी जब भी मुलाकात हुई तो मैं बताऊंगा कि हमारे सफाती जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे दिलचस्प वाकयात रोनुमा होते हैं। लेकिन सबसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा वाकया ये है, ये जो सियासी सफर है या सफाती सफर है, तो उसकी वजह यह है कि आप मुल्क से बाहर निकलते हैं, अब दुनिया के मुख्तलिफ बर आजमों में जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, मुख्तलिफ तहजीबें देखते हैं, आप देखते हैं कि कैसा एक आलमी निज़ाम चल रहा है और इसमें किस तरीके से इन लोगों को जो बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आते हैं लेकिन उनकी जिंदगियों में एक किस्म की मासलत भी है, कैसे इन लोगों को इकट्ठा किया जाए, कैसे इनके दरमियान गलत फहमियों को दूर किया जाए, कैसे इनके हकूक का इज्तमाही तौर पर तहफ्फुज़ किया जाए।
तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एडवेंचर की सूरत हो कि हर रोज एक नया नई सूरत हाल सामने है, एक नया मसला सामने है, या कुछ हल करना है या किसी को हल करके देना है, तो एडवेंचर से नहीं हो जाता ये?
जी, सिफारती सफर भी एक किस्म की कोपेमाई है और इसमें भी जो है आपको हिमालय को सर करना पड़ता है।
अज़हर खान, पाकिस्तान की जब 75 तारीख की हम बात करते हैं तो सफारतकारी के शोबे में कुछ बड़े ही नुमाया नाम भी सामने आते हैं। सर जफरुल्ला खान हैं, पतरस बुखारी हैं, आगा शाही हैं, साहबजादा याकूब खान हैं, जमशेद मार्कर हैं, मुतअद्दिद नाम है अगर हम लेते चले जाएं, तो उनके जमाने की सफारतकारी और आज की सफारतकारी में कोई बुनियादी फर्क लगता है आपको, या वही बात कि जो टेक्नोलॉजी की बात जिससे हमने शुरू किया था हम वहीं पर वापस आ रहे हैं?
नहीं, वहां नहीं, मैंने देखा कम अज कम इसमें से जो है मुझे शरफ हासिल हुआ कि मैं जमशेद मार्कर साहब से के साथ काम करूं। न्यूयॉर्क में जब मैं था तो उस वक्त वो मेरे सफ़ीर थे, और बाद में कभी कभार जो है साहिबजादा साहब से मुलाकात का भी मौका मिला है। मैं समझता हूं कि वो लोग ज़्यादा रिवायती थे, ज़्यादा वज़ेदार थे, और انسانی تعلقات کے اوپر زیادہ یقین رکھتے تھے. آج کل جو ہے جو لوگ ہے وہ ایک قسم کی جو میں سفارت میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا لیکن جو عام طور پہ جو سفارتکاری ہے وہ زیادہ ٹرانزیکشنل ہے, یعنی ہیئر اینڈ ناؤ کے بارے میں ہے. اس میں جو ہے کوئی طویل المیعاد منصوبے نہیں بنائے جاتے. تو اس میں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سفارت کے اوپر اور سفارتکاری کے اوپر بوجھ بھی بہت بڑھ گیا ہے. یعنی آج کل چونکہ ذرائع ابلاغ جو ہے ہر وقت ایک قسم کی آپ کے اوپر اطلاعات کی بمبارڈمنٹ کرتے رہتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, پھر نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے سفارتکاری کی ایک حیت بدل رہی ہے ساری دنیا میں. تو اس کی وجہ سے اور دوسرے یہ کہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یہ تھا, یعنی جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ان کے زمانے میں سفیر جو ہوتے تھے وہ واقعی پلینیپوٹینشری ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے چونکہ سفر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اور ٹیلی فون واٹس ایپ, تو آج کل یہ صورت ہے. حالانکہ بعض اوقات جو ہے ملک کے اندر جو وزراء ہوتے ہیں یا وزراء اعظم ہوتے ہیں یا صدور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں, اور برسلز میں مجھے پتا ہے کہ 2 گھنٹوں میں سارے کے سارے جو ہے 2 گھنٹے کے لیے جو ہے سارے کے سارے یورپین یونین کے لیڈر اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں گے. ایسی صورتحال پہلے نہیں ہوتی تھی, اور لہٰذا یہ ہے کہ اس لیے ایک اعتبار سے سفرا کا کام بڑھ گیا ہے, وقت چوکنا رہنا ہوتا ہے.
سر آپ نے وہ بات کی ابھی سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے, اس میں انفارمیشن ہے, اس کے لیے میں لفظ استعمال کرتی ہوں, ڈس انفارمیشن بھی ہے, مس انفارمیشن بھی ہے, ایک اور لفظ کل بہت اچھا مجھے پتا لگا کہ اینٹی انفارمیشن بھی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اتنے سارے محاذ کھل جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا اور سوشل میڈیا کا سفارت کار کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے؟ دو ملکوں کے درمیان جو سفارت کاری کے تعلقات ہوتے ہیں ان پر بھی اثر مرتب ہو سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک مثبت قوت ہے, اس نے فرد کو بہت طاقت دی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے. یعنی اب عام شخص بھی اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اگر بزنس کرنا چاہے, کوئی جو ہے پڑھنا چاہے, تو سوشل میڈیا کی وجہ سے, ویب کی وجہ سے, اس کے بعد یوٹیوب کی وجہ سے, تو جو اطلاعات ہے ان کا تبادلہ بھی تیزی سے ہوتا ہے, لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہیں. اب آتے ہیں نقصان کی طرف, تو نقصان میں یہ ہوا جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہاں غلط اطلاعات دی جاتی ہیں, حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے, اور سب سے جو اس میں ایک چیز ہوتی ہے آج کل کے, اس میں رائے سازی کی جاتی ہے. پہلے اخبارات کے ذریعے کی جاتی تھی, اب سوشل میڈیا کے ذریعے کی جاتی تھی. اور اگر آپ کے بارے میں یا آپ کے ملک کے بارے میں یا کسی کارپوریشن کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کی جائے اور اسے پھیلا دیا جائے, تو اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اسے واپس کرنا یا اس کی تردید کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی افادیت کو تو برقرار رکھا جائے, لیکن اس میں جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے حل کرنے کی کوشش کی جائے.
چلتے چلتے ایک اور سوال کر لیتے ہیں. 2022 کا سال پاکستان امریکہ تعلقات کے 75 برسوں کو بھی مکمل کرتا ہے. ان برسوں میں ان دونوں ملکوں نے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں, کبھی بہت صورتحال بہتر بھی رہی, کبھی بہت صورتحال اتنی اچھی نہیں رہی. اس وقت حالات کیا ہیں, کیونکہ آپ خود امریکہ میں سفارتکاری کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں 75 سال پر محیط اس سفر کو؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات 75 سال میں بہت مضبوط رہے ہیں اور زیادہ ادوار میں مضبوط رہے ہیں. مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان اور امریکہ نے مل کر جنگیں لڑی اور اس کے بعد امن سازی میں بھی مشترکہ کوششیں کی ہیں, تو یہ اس کے مثبت پہلو ہیں. اور یہ بھی میں بار بار یہاں ذکر کرتا ہوں اپنے مخاطبین سے کہ دیکھیے 1950 کی دہائی میں امریکہ نے ہماری بڑی مدد, ہماری ایک کمزور ریاست تھی اس وقت جو ہے, امریکہ جیسے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے, فوجی تعلقات بڑے, معاشی تعاون بڑا, تو اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان ایک مضبوط ریاست بن گیا. تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں, اس دور کو نہیں بھولنا چاہتے. اور دوسرے جو ہے پھر جو بعد کے ادوار میں بہت اعتماد بھی رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, اور بعض اوقات یہ کہا جاتا تھا کہ पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ हलीफ है, मोस्ट अलाइड अलाय कहा जाता था। तो ये तो इसके मस्बत पहलू है। अच्छा, दूसरे ये है कि मैं समझता हूँ कि इसी पहलू को हम जो है ज्यादा तकवीत देने की कोशिश करेंगे। अभी जो है हमारी कोशिश ये, आपने पूछा क्या है आजकल ताल्लुकात कैसे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी जहत पे हैं और कभी इम्कानात हैं कि हम इसको आला सतह पे ले जाएंगे, बाहमी ताल्लुकात को आला सतह पे ले जाएंगे। और उसके लिए यह है कि आपको पता है ना कि पिछले दो अशरों में हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, मुश्किल जंग थी, अमेरिका ने भी कुर्बानियां दी सरमाए की और इंसानी जानों की, और हमने भी बेतहाशा कुर्बानियां, 80,000 के करीब लोग जो है वो कुर्बान हो गए। और फिर जो है हमें बहुत ही माशी नुकसान हुआ पाकिस्तान में। इस दौर में बाहर की कंपनियां या कॉरपोरेशंस या सरमाकार सरमाकारी करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब हम चाहते हैं कि जब हम अफगानिस्तान के इस मरहले से गुजर के बाहर आ गए तो हमारा जो है अमन सलामती के मामलात के सिलसिले में तआवुन तो जारी रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारे माशी और तजारती ताल्लुकात और टेक्नोलॉजी के ताल्लुकात जो है उन्हें बढ़ना चाहिए। और इस सिलसिले में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और हम इसमें से कुछ के नताइज सामने आ रहे हैं, कुछ के नताइज बाद में आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस साल इस वजह से बेहद खुश हूँ कि हमारी बाहमी तजारत में अच्छा इजाफा हुआ है, हौसला अफजा इजाफा हुआ है। पिछले साल जो है हमारी बरामदात कोई तकरीबन 7 बिलियन के करीब थी अमरीका में, इस मरतबा जो है वो 9 बिलियन के करीब हैं। और जो पाकिस्तान का टैक्स सेक्टर है उसमें अमरीका की तरफ से बहुत ज़्यादा सरमाकारी हो रही है, तो इसलिए और इसके बड़े रोशन इम्कान हैं कि ये सरमाकारी बढ़ेगी। और ये सिर्फ पाकिस्तानी अमरीकी नहीं कर रहे बल्कि यहाँ की जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो भी अमरीकी पाकिस्तानी मार्केट की तरफ देख रहे हैं। तो ये मेरे आपको फीडबैक है कि ये बहुत अहम हमारा ताल्लुक है अमेरिका के साथ और हम इस ताल्लुक को मजबूत तर करेंगे।
जी एम्बेसडर खान, आपसे हमने बहुत सारे संजीदा सवाल तो कर लिए सफारतकारी के बारे में, आपकी जिम्मेदारियों के बारे में, फिर बड़ा ही अहम सवाल पाकिस्तान अमेरिका के 75 साल ताल्लुकात के बारे में। लेकिन बहुत पहले जब आपने अपने फराइज की अदायगी का अभी आगाज किया था तो उस वक्त आपने कुछ हमारे शोबों से भी आपकी वाबस्तगी रहेगी थी, यानी रेडियो और टेलीविजन के साथ। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं कल और आज की, तो कल जब आप रेडियो और टेलीविजन से वाबस्ता थे और आज जब रेडियो और टेलीविजन को आप देखते हैं, तो उस वक्त से अब तक के सफर में आपको क्या क्या तब्दीली नजर आती है और खुद आपका वो सफर कैसा था?
देखिए, जिस वक्त मैंने रेडियो किया था या टेलीविजन एंकरिंग की थी तो वो एक किस्म का जमाना कदीम था। अब तो जो है अगर आज के मियार से जांचें तो वहाँ बहुत बिल्कुल बुनियादी किस्म के मीडियम्स होते थे, तो उसमें रेडियो था। रेडियो में हम लोग जो है, अगर से रेडियो बहुत ज़्यादा सुना जाता था, पूरे पाकिस्तान में सुना जाता था, तो रेडियो में मैंने यानी मेज़बानी की है प्रोग्रामों की, उसके अलावा ख़बरें पढ़ी हैं अंग्रेज़ी में। और पाकिस्तान टेलीविज़न में मैंने बहुत से प्रोग्रामों की एंकरिंग की है, या जिसे मेज़बानी ही कहें। तो कहने का मतलब यह है कि लेकिन उस वक्त जो है इन ज़राए इब्लाग की अहमियत कुछ कम ना थी। मैंने थोड़ी बहुत सहाफ़त भी की थी उस ज़माने में प्रिंट मीडिया के साथ, तो फ़र्क तो बहुत पड़ चुका है। यानी अभी जो है उस ज़माने में, मिसाल के तौर पर उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, तो उस ज़माने में फिल्में बड़े शौक से देखी जाती, आजकल तो नेटफ्लिक्स देखते हैं लोग। और यानी मतलब वो जो बड़ा फिल्मों का मीडियम था वो उस तरीके से अहम नहीं रहा जैसे पहले था। तो ये है मेरा तजुर्बा, लेकिन मैं इस तजुर्बे को हमेशा बहुत खुशगवार समझता हूँ क्योंकि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया या जिन्होंने मेरी तरबियत की, उन्होंने मेरे लब लहजे की नोक पलक दुरुस्त की। उसके अलावा ये है कि मुझे बताया कि जब लोगों से आप गुफ्तगू करते हैं तो आवाज़ की क्या अहमियत होती है, आवाज़ के उतार चढ़ाव की क्या अहमियत होती है, और आप किसी को अपना मफहूम पहुंचाना चाहें तो किस किस्म का लब लहजा आपको इख्तियार करना चाहिए। बाद में जब ख़ास वक्त पे मैं दफ्तर खारजा का तर्जुमान मुकर्रर किया गया तो उस वक्त जो है जो मेरी उस वक्त की सलाहियतें थी वो काम आई। अगरचे मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं कभी जो है दफ्तर खारजा जाऊँगा। वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं जो है इसमें ना आता सिफारतकारी में, तो मैं या सहाफी होता या एंकर होता या किसी कहवा खाने में कोई अदीब होता।
बहुत शुक्रिया एम्बेसडर खान, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल था, लेकिन सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए आपको जहमत हम देते आए हैं, देते रहेंगे, हम आपके साथ बात करते रहेंगे और आपकी बात अपने सुनने वालों तक भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम सो ग्रेटफुल।
खुदाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा।